प्रभु का वरदान है, योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। दिल की दुआएं वो पाए सभी का, हर दिल का अरमान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, प्रभु सीरत की वो है सूरत। त्याग तप की वो है मूरत, प्रभु सीरत की वो है सूरत। हर बंधन से मुक्त वो रहता, वो तो गुणों की खान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा,
ओम शांति। योगी जीवन क्या है? बड़ा प्यारा और प्रभु का वरदान है। तो संगम युग पर ही केवल हम सबको ये वरदान्य जीवन प्राप्त होता है, और इस संगम युग के आधार पर हमारा सारा कल्प चलता है। जितना अब हम संगम पर जमा करते हैं, उसी के आधार पर हमारा फ्यूचर निर्धारित होता है। बाबा कहते हैं ना, एक एक सेकंड भविष्य 21 जन्म के कनेक्शन से है। 31 तारीख की मूली, 31 जनवरी। तो संगम पर हम सबको ये जीवन वरदानी जीवन मिला हुआ है, नया जीवन है। पुराने जीवन से हम मर चुके हैं। जैसे बाबा कहते, तुम्हारा ये जन्म मरजीवा जन्म है। तो मरजीवा जन्म है तो पुरानी कोई भी स्मृतियाँ, पुरानी कोई भी बातें, पुराने कोई भी संस्कार, पुराना व्यवहार, पुराने संबंध, ये सारे हमारे परिवर्तन हो चुके हैं। हमारी सोच, दृष्टि, वृत्ति, कृति, सारा परिवर्तन हो चुका हुआ है। तो ये संगम युग बहुत श्रेष्ठ युग है, कल्याणकारी युग है, पुरुषोत्तम संगम युग है, ऑस्पिशियस युग है, चढ़ती कला का, ना केवल चढ़ती कला बल्कि उड़ती कला का युग है। तो ये जो जीवन है, ये बाबा कहते डायमंड तुल्य है, ये हीरे तुल्य है। देवताओं का जीवन कौन सा है? स्वर्ण तुल्य है, गोल्डन तुल्य है, लेकिन डायमंड तुल्य जीवन है। डायमंड हमेशा चमकता रहता है, सोना चमकता नहीं है। चमकता है लेकिन प्रकाश नहीं बिखेरता वो। लेकिन डायमंड के ऊपर धूप ही पड़ती है तो भी अपना प्रकाश बिखेरता वो। तो हम बाबा के बच्चे, बाबा ने उस दिन का ना, तुम हीरे की मूर्तियां हो, कितना सुंदर ये टाइटल दिया। हम सब कौन है? हीरे की मूर्तियां हैं। तो हीरे की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? हीरे की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तुम बेदाग हीरे हो। और क्या विशेषताएं होती हीरे की? चमकदार होता है, उसको धूप में गर्म नहीं होता है वो। तो संसार की जितनी भी विघ्न आए, बाधाएं, परिस्थितियां आए, उससे प्रभावित ना हो हम, क्योंकि हमें बाबा ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का, हमारे 84 जन्मों का सारा ज्ञान हमको दे दिया हुआ है। जब ये ज्ञान स्मृति में रहता है तो हम अपने वास्तविक स्वरूप की, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते हैं, और जैसे विस्मृत हो जाते हैं तो क्या होता है? उदासी, फिर पुरानी दुनिया के ख्यालात, टेंशन, चिंता, इन सब बातों में, तो विस्मृति और स्मृति सारा खेल इन दो बातों पर निर्भर करता है। तो जांच करनी है सारे दिन में हमें कितनी स्मृति रहती है, निरंतर स्मृति रहे। जरूरी नहीं है कोई एक स्मृति रहे, बाबा ने हमको हजारों स्मृतियां दी हुई हैं, किसी न किसी स्मृति में मन रमण करता रहे। बाबा ने हम सबको होमवर्क दिया था, कौन सा, 31 जनवरी को दिया था होमवर्क, 6 महीने के लिए, कौन सा हाँ जी, व्यर्थ को समाप्त करने का। हाँ, और क्या दिया था मुरली में, 3 होमवर्क थे, होमवर्क तो बहुत हो सकते हैं, और क्या होमवर्क दिया था, 3 प्रकार की ड्रिल बताई थी। देखो जिनको याद है उनकी चेहरा अलग चमक रहा है ना। तो ये खुशी का पहला पॉइंट है स्मृति, कि जो हमको होमवर्क दे के गया हुआ है, अगर हम थोड़ा बहुत भी कर रहे हैं तो भी एक आत्म संतोष पैदा होता है, खुशी रहती है। भले हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जो टीचर ने हमको कहा है उसको छोड़ के हम दूसरा ही कर रहे हैं, भले उसका कहा हुआ ही कर रहे हैं, लेकिन जो जिस पर टीचर ने हमको जोर दे के कहा कि ये तुमको इस टाइम में करना है, कि उस टाइम में उस होमवर्क का महत्व है। दूसरे होमवर्क तो साथ साथ चलते ही रहेंगे, लेकिन इस होमवर्क का बहुत बड़ा महत्व है। तो 3 होमवर्क बताए थे उसमें, कौन कौन से, 1 तो 3 स्वरूपों की ड्रिल, दूसरा व्यर्थ को समाप्त, तीसरा बताया था मुरली का मनन चिंतन, बताया था कि नहीं, याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, धुंधला धुंधला। तो मनन चिंतन, तो ये हमारे सारे खुशी के ट्रिगर हैं। अगर ब्राह्मण जीवन में खुशी नहीं है तो ब्राह्मण जीवन कैसा है फिर? ठीक है परिस्थितियां आती हैं, ऊपर नीचे स्थिति होती है, लेकिन सारे दिन का अगर हम चार्ट चेक करें तो अधिकतर तो हमें जीवन में खुशी रहनी चाहिए ना। चार्ट अधिकतर खुशी का रहना चाहिए, गम वाला, खुशी वाला रहना चाहिए। तो खुशी हमेशा कायम रहे उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, है ना। तो खुशी किसे रहती है, तो सबसे पहली बात है जो आज्ञाओं का पालन करते हैं। भगवान हमारा टीचर है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, वो हमें पढ़ाने के लिए आता है, तो उसका अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो हमारी खुशी गायब हो जाएगी। इसलिए हमको डेली मुरली से तो कुछ ना कुछ पॉइंट याद रखनी है, साथ में जो बाबा एक लंबा टारगेट हमको देते हैं 6 मास का जो दिया है, तो 6 मास में ये हमको 3 पॉइंट तो याद रखने हैं, क्योंकि अभी दूसरी मुरली आएगी तो दूसरा होमवर्क भी आ जाएगा, लेकिन ये 3 पॉइंट भूलने नहीं है, ये हमेशा करने हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, आज ही बाबा ने कहा ना, चलते फिरते भी याद में रहे, है ना। तो ये हमेशा हमको होमवर्क पर पूरा फोकस करना है, कुछ ना कुछ तो हमारे मन बुद्धि बिजी रहना चाहिए। माया कब आती है, जब फुर्सत होती है, फुर्सत में ही माया अटैक करती है। इसलिए बाबा कहते हैं बाप की मोहब्बत में अपने आप को इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ के आने की मार्जिन ही ना रहे। कितना सुंदर उसका मेन हेडिंग था, सारा मुरली का सार तो वही था। तो बाबा की मोहब्बत में हम कितना लीन रहते हैं, तो बाबा की मोहब्बत को अनुभव करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जरूरी नहीं खाली हम योग में बैठे तो उसका अनुभव करेंगे, चलते फिरते कर सकते हैं, किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं तब कर सकते हैं, किसी का फोन से बात कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, करा सकते हैं, किसी को खुशी का अनुभव करा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही कोई मेथड है खुशी का, हजारों मेथड है खुशी के, क्योंकि हमारा योगी जीवन है, ये वरदानी जीवन है, साधारण जीवन नहीं है। तो हमको स्मृति रखना है, देवताएं हैं, इष्ट देव हैं जो वरदान देते हैं, तो उनका जीवन कैसा होता है, हमेशा दाता का जीवन है। उनको कोई अपेक्षाएं नहीं है, इच्छाएं नहीं है, कामनाएं नहीं है, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले काम धेनु है। तो उतना हमारे पास मटेरियल भी तो होना चाहिए ना, हमारी स्मृतियां भी तो वैसी होनी चाहिए। अगर हमारी स्मृतियां कमजोर हैं, शक्तिहीन हैं, तो दूसरों का अनुभव कैसे करेंगे। तो खुशी वाली स्मृतियां होनी चाहिए। तो हमेशा अगर खुशी हमको कायम रखनी है तो जो भी बाबा की आज्ञा मिलती, श्रीमत ही बाबा की आज्ञा है, तो उन आज्ञाओं को कुछ ना कुछ 2-4 पॉइंट डेली हमको होमवर्क करना उसके ऊपर। जैसे आज की मुरली में था, क्या करते रहो तो एवरे हेल्दी वेल्दी रहेंगे, ज्ञान योग का एप्पल खाते रहो, है ना, कि कुल्लू मनाली वाला एप्पल खाते रहो, ज्ञान योग का एप्पल। तो ये कहाँ मिलते हैं ज्ञान योग के एप्पल, मुरली में मिलते हैं। कब मिलते हैं, सुबह सुबह मिलते हैं। तो खाया सबने आज, अच्छा इसको कैसे खाना, अभी ये तो हमने सुन लिया और याद भी रख लिया, ज्ञान योग का एप्पल खाते रहो तो माया की बीमारी से बच जाएंगे, ये था मेन हेडिंग, है ना। तो अभी खाना कैसे है उसको, केवल लाइन रखने से स्मृति में थोड़ा नहीं होगा, तो कैसे खाएंगे? मनन चिंतन, क्या मनन चिंतन करेंगे मुरली पर? क्या 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 मुरली पर चिंतन करेंगे? हाँ, वो तो कर्मातीत अवस्था है निरंतर। तो माया की बीमारी से बचना है तो ज्ञान योग के एप्पल खाने हैं। तो ज्ञान के एप्पल क्या क्या हो सकते हैं? उसमें ये है कि जितना भी हमको आज तक बाबा से ज्ञान मिला है उसको स्मृति में दोहराना है बार बार। कौन कौन सा ज्ञान मिला है? सबसे पहले तो हमको अपना ही ज्ञान मिल गया है कि हम सब कौन है। हाँ, बाबा ने उस दिन संडे की मुरली थी ना, 30 जनवरी की मॉर्निंग की, 31 जनवरी शाम को, 30 जनवरी मॉर्निंग की, कि केवल एक स्मृति ने तुम्हारा जीवन सारा परिवर्तन कर दिया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। तो एक स्मृति ने क्या हो गया, ये ज्ञान का एप्पल है, ये एक एप्पल है। अब खाली सुन लिया तुम आत्मा हो, अब उसकी अनुभूति करनी है, उसकी गहराई में जाना है, क्योंकि ज्ञान योग फटाफट करने वाला नहीं है, ये तो लंबे समय तक है। आत्मा की अनुभूति सालों साल लग जाते हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन बैठे और तुरंत सारा हो जाएगा, क्योंकि देह के संस्कार जन्म जन्म के हमारे अंदर जम गए हैं, एकदम चिपक गए हुए हैं, और उनको अलग करना बड़ा मुश्किल है। तो वो आत्म अनुभूति करनी है। तो ज्ञान का पहला पॉइंट, ज्ञान का एप्पल, मैं आत्मा हूं, तो महसूस करना है। और ये लंबे समय की प्रैक्टिस के बाद महसूसता होती है, ये देह अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। जैसे आत्मा इन आंखों से देख रही है, बस एक ही संकल्प करना, भले युग में बैठ के दूसरा संकल्प कोई नहीं करो, मैं आत्मा यहां बैठकर इन आंखों से देख रही हूं, बस इतना ही। भले सामने कौन है, क्या है, या सामने दरी विषय है, कुछ भी है, वहीं एकाग्र कर दो अपने मन को, मैं आत्मा इनको देख रही हूं, या सामने कोई बैठा हुआ है तो मैं आत्मा इस आत्मा को देख रही हूं, इतना संकल्प करना बस। आज की मुरली में था, आत्मा आत्मा देखेंगे तो क्या होगा, भाई बहन की स्मृति रहेगी तो खुशी रहेगी, एक खुशी का पॉइंट है। तो ये ज्ञान का एप्पल है, तो इस एप्पल को खाएंगे तभी तो प्रैक्टिस करेंगे ना। अगर पेट में भोजन ही नहीं है तो होमवर्क भी कैसे करेंगे? हजम करने की शक्ति को हमको दिन प्रतिदिन बढ़ाना है। तो मैं आत्मा हूं, फिर दूसरा एप्पल हो सकता है, मैं कौन सी आत्मा हूं, कौन सी आत्मा हूं? तो हजारों सोमान की माला, बाबा ने कहा सोमान की माला हमेशा पहन कर रखो। तो कौन सी आत्मा है हम, कौन सी आत्मा है, कितनी महान है, बात मत पूछो, इतने से थोड़ा नहीं होगा। तो कितनी महान है, कोटों में कोई, संसार की कितनी करोड़ों आत्माएं हैं, और केवल हमको भगवान ने चुना। और कहां से चुना, वो गांव के कोने में कहीं बैठे हुए थे, वहां से पकड़ के ले आया भगवान हमको, और कहां बिठा दिया, हिस्ट्री हॉल में बिठा दिया। ये भगवान की गोद है, ये पावन धाम है जहां हम बैठे हैं, ये पवित्र धाम है, परम धाम से भगवान स्वयं यहां अवतरित हुआ है। तो ऐसे स्थान पर हम आत्माएं बैठी हैं, हमारे में वो विशेषताएं, वो योग्यताएं, वो क्वालिटीज भगवान ने देखी है। तो दूसरी बात, मैं कौन सी आत्मा हूं, जिस आत्मा के ऊपर स्वयं भगवान की नजर पड़ी है, जिस आत्मा को संसार की आत्माओं ने नहीं पहचाना, भगवान ने पहचान लिया, जिस आत्मा की पवित्रता के बल से संसार पवित्र बनेगा, उस आत्मा को भगवान ने पहचाना है। तो ज्ञान का दूसरा एप्पल हो गया। फिर तीसरा, मुझ आत्मा का कर्तव्य क्या है, अभी मुझे चुना किस लिए है, कर्तव्य क्या है? दुआएं, दो दुआएं लो, आज के वरदान में था ना, संतुष्ट रहना है, भले गुण धारण हो नहीं हो छोड़ दो, शक्तियां धारण हो नहीं हो छोड़ दो, लेकिन क्या करो, दुआएं दो दुआएं लो, तो बहुत सहज काम है कि धुआं दो धुआं लो, धुआं नहीं दुआएं, तो कैसे दुआएं मिलेंगी? याद रखना तो फिर भी आसान है, लेकिन काम करना बड़ा मुश्किल होता है। जब हम संबंध संपर्क में आते हैं और सामने वाला कुछ थोड़ा बहुत बोल दे, दुआएं निकलती है। कितनी दुआएं निकलती है, ढेर सारी, लेकिन निकलती हैं अगर हमने पहला पाठ पक्का किया है तो। ब्रह्मा बाबा क्यों पहले पाठ पर पक्का करने की, क्योंकि दुआएं निकलती हैं। हाँ, सुनने के बाद अगर हमारा मन हलचल में नहीं है और हम अंदर अपने मन को एकदम शांत स्थिर रखते हैं, मुस्कुराते हैं अंदर ही अंदर, बाहर से नहीं, तो दुआएं निकलती हैं। तो दुआएं तब होगी जब हमारा पहला पाठ पक्का है कि हम एक ही घर के हैं, एक ही बाप के बच्चे हैं, हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, है ना, एक ही कुनबे के हैं, एक ही बिरादरी के हैं, एक ही वंश के हैं, एक ही कुल के हैं, तो वो खुशी रहेगी। जैसे अपनी लौकिक फैमिली होती है तो उनसे कितना प्यार होता है, पड़ोसियों से कम होगा लेकिन लौकिक फैमिली से ज़्यादा होता है। तो वास्तव में हम सब तो एक ही फैमिली के हैं ना। हमको बाबा ने ओरिजिनल ज्ञान दे दिया, सत्य ज्ञान दे दिया, अविनाशी ज्ञान दे दिया है कि तुम आत्माएं आपस में भाई भाई हो। तो स्मृति पक्की करनी है, नहीं तो देखा गया ऊपर ऊपर से ज्ञान युक्त ठीक चलता है, लेकिन जैसे मान लीजिए किसी से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो हम उसको अच्छी तरह से बता देते हैं, फिर वहाँ शुभ भावनाएं हमारी 9-2-11 हो जाती हैं, भाग जाती हैं, रहती नहीं है। फिर तो कहते हैं कि शुभ भावना रखनी चाहिए, कहने से कुछ नहीं होता है, ये तो आंतरिक प्रैक्टिस है, आंतरिक अभ्यास है, अंदर ही अंदर कि सब मेरे हैं, हम सभी एक ही बाप के बच्चे हैं, ये जैसे परिवार मेरी 5 उंगलियों को बराबर है, और उंगलियां जब तक इकट्ठी नहीं है तो कोई भी काम संपूर्ण नहीं होगा। जैसे एक बार उंगलियों में थोड़ा थोड़ा अभिमान आ गया, 5 उंगलियों में क्या अभिमान आया, अंगूठा कहता मैं बड़ा हूँ, हस्ताक्षर करता हूँ मेरे बिना काम नहीं होता है, ये उंगली कहती मैं से बात करती हूँ तो मेरे बिना काम नहीं, ये कहती मैं तो हूँ ही बड़ी, और ये धार्मिक क्रियाकलाप करती है, और छोटी कहती है सुभान अल्लाह, छोटे को भगवान भी बड़ा कहते हैं, है ना। तो 5 का अहंकार आ गया। अब जज बैठा इनके आगे तो उनको अहंकार तोड़ने के लिए तो एक रसगुल्ला रख दिया सामने सबकी, हर उंगली को बोला उठाओ इसको, तो पहली वाली एक कैसे उठाएगी, एक उठा सकती है उंगली, रसगुल्ला नहीं उठा पाई, दूसरी को नहीं, एक अकेले अकेले तो कोई नहीं उठा पाती, लेकिन 5 बोला 5 इकट्ठे को उठा तो उठा सकते हैं। इसी तरह से हम सब आत्माएं भी एक ही परिवार के हैं, अगर किसी भी उंगली को, किसी भी भाई बहन को हमने अपने से जुदा होने का कोई षड्यंत्र रचा है या ऐसा कोई वातावरण पैदा करने की हमने योजना बनाई है तो वो बोझ हम अपने ऊपर ही चढ़ा रहे हैं, और जब बोझ है तो उठ नहीं सकेंगे। बाबा ने क्या बताया उस दिन, बेफिक्र बादशाह बनो, 31 जनवरी की मुरली, बेफिक्र बादशाह, बेफिक्र अर्थात कोई फिक्र नहीं, और बादशाह अर्थात बादशाही का नशा हो कि हम किसके बच्चे हैं। तो उसका कौन सा मेथड बताया था, बेफिक्र बादशाह बनने के लिए अगर खुश रहना है तो हमेशा बेफिक्र बादशाह बनना है, और बेफिक्र बादशाह बनने के लिए कौन सी स्मृतियां बाबा ने दिलाई, सुनी थी ना मुरली उस दिन सभी ने, ऑनलाइन ही सुनी होगी, क्या बताया था, सारे बोझ मेरे में दे दो, मेरे को तेरे में बदल दो। तो मेरे को तेरे में हमने बदला या हमने बोझ पकड़ के रखा हुआ है, तो धीरे धीरे मेरे को तेरे में अर्थात ये परिवार भी बाबा का है। ये नहीं सोचना है घर में लौकिक में हम रहते हैं, ये मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, वो तो हैं ही हैं, कोई भगवान लेके नहीं जाएगा, लेकिन सबसे पहले उसके हैं वो, हमको तो एक सेवा के लिए एक मौका मिला हुआ है, लेकिन हमने परिवार के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने के संस्कार बड़े कड़े कर दिए हुए, इसलिए छूटते नहीं उनसे, इसलिए बार बार उनके ऊपर अपनापन रहता है, नेगेटिव अपनापन। तो अपनापन तो होना चाहिए लेकिन रूहानियत वाला होना चाहिए जिससे उनको अच्छी अनुभूति हो। तो बेफिक्र बादशाह बनना है तो मेरे को तेरे में अर्थात जो भी बोझ है, ये तन किसका है, भगवान का। पिछले संडे की मुरली क्या था, बाबा ने कहा तन के लिए, हाँ तन भी दे दिया तो तुम्हारा कैसे है, और मन के लिए क्या कहा था, मन को मेरे में लगाओ, मन मना बाबा, और दिल के लिए क्या कहा था, साफ दिल मुराद हासिल। तो धीरे धीरे पॉइंट इकट्ठे याद रखने हैं। तो बोझ जितने भी हमारे, क्योंकि अनेक जन्मों के बोझ आत्मा के ऊपर है, और उन बोझों से हमको प्यार भी बहुत हो गया है, छोड़ते नहीं हम उनको, हल्के होंगे तो ही मुड़ पाएंगे, तो ही हमारा बुद्धि ऊपर जाएगा, नहीं तो अगर हम इन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं, अब बुद्धि ऊपर जाएगी कहाँ, पूरा टाइम तो ऐसे निकले जा रहा है। इसलिए बाबा ने कहा तुम हो VIP, छोटी छोटी बातों में VIP, अपना समय व्यर्थ नहीं करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं VIP का है। बाबा कहते जितने भी VIP लगा लो कम है, क्योंकि संसार की तुलना में कितने बड़े हैं, छोटे मोटे मिनिस्टर होते हैं, उनका भी अपना टाइम टेबल होता है। बाबा ने कहा अपना टाइम टेबल बनाओ, तो सारे दिन में हमको जितना भी समय मिलता है वेस्ट नहीं जाना चाहिए, किसी ना किसी तरीके से टाइम सफल करने की युक्तियां रचनी है, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है और काम बहुत बड़ा है। बाबा ने मुरली में कहा था ना 31 तारीख को ही कि ब्रह्मा कुमारियां अच्छी हैं, संसार वाले ऐसे कहते हैं, लोग कहते हैं, लेकिन बाबा के लिए अभी इतना नहीं कहते हैं, वो बाप प्रत्यक्ष होना चाहिए, असली काम तो हो ही नहीं रहा है। यही सुनने में तो केवल यही आता है कि ब्रह्मा कुमारी अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन इनका हेड कौन है, जो उस पूरी सृष्टि का हेड प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जो सब धर्मात्माओं का भी हेड है, वो कहाँ प्रत्यक्ष हो रहा है। तो केवल भाई बहने तो दिख रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा ना टीचर बहनों से मुलाकात, तुम्हारे सूरत और सीरत से बाप की प्रत्यक्षता हो, सूरत अर्थात चित्र और सीरत अर्थात चरित्र,
चित्र अर्थात ये जो चेहरा है हमारा, कि इनको जरूर कुछ ना कुछ तो प्राप्ति हुई है। कितना बड़ा काम है ये, घर में रह रहे हैं, अनेक परिस्थितियां आ रही हैं, लेकिन उन परिस्थितियों का प्रभाव हमारे चेहरे पर नहीं दिखाई देना चाहिए। बाबा कहते तुमको हमेशा हर्षित रहना है, आज की मूल्य में था। और हर्षित कौन रह सकता है, दो बातें थी उसमें, एक तो था आत्मा नहीं रहेंगे और दूसरा जो सर्विस करते रहेंगे, निरंतर बाप की याद में रहेंगे। वो कलेक्शन करना, याद रखना, स्मृति रखनी है। स्मृति रखेंगे अपने आप स्वरूप बन जाएंगे, भगवान का स्वरूप है हम वास्तव में। संसार के आत्माओं के लिए क्या है, बाबा ने कहा ना अंत में तुम आत्माओं से क्या दिखेगा, एक एक से बाप की प्रत्यक्षता होगी। तो हमेशा हमको ऊंचे से ऊंचे सुमान की स्मृति में रहना है। ऊंचे से ऊंचे भगवान के बच्चे हैं, ऊंचे से ऊंचे घर के रहने वाले हैं, ऊंचे से ऊंचे हमारे चरित्र हैं, ऊंचे से ऊंचे हमारा गायन है, ऊंचे से ऊंचे हमारा पूजन है, ऊंचे से ऊंचे हमारे कर्म हैं, ऊंचे से ऊंचे हमारे संस्कार हैं। तो स्मृति कहाँ रहती है, छोटी छोटी बातों में हम चले जाते हैं। क्यों नहीं हमारे स्वास्थ्य संस्कार में परिवर्तन आ रहा दिन प्रतिदिन, तो हमारी संस्कारों में परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि हमारी स्मृतियां कमजोर हो गई हैं, दूसरी छोटी छोटी बातों को पकड़ के रखा हुआ है। इन सब से ऊपर उठना है, हम बेहद बेहद के आसमान में उड़ान भरने वाले हैं। ब्रॉड बुद्धि, विशाल बुद्धि, उस दिन था ना चार दिन पहले मुरली में, तुमको स्वच्छ बुद्धि बनना है, विशाल बुद्धि बनना है, पवित्र बुद्धि बनना है। तो हमको अगर हमेशा खुशी कायम रखनी है तो सबसे पहली बात है आज्ञाकारी बनना है। जो भी हमको डेली श्रीमत मिलती है, आज्ञाएं हैं भगवान की, कुछ तो हम उसमें पॉइंट कलेक्शन कर लें और उस पर थोड़ा काम करें। जैसे आज के मूल्य में बताया ज्ञान योग का एप्पल, तो थोड़ा तो उसमें करें हम। ऐसे योग के एप्पल कौन से हो सकते हैं, वो चिंतन को बढ़ाना है अपने आप, मन बुद्धि को उसमें बिजी रखना है, क्योंकि मन बुद्धि का काम तो है कुछ ना कुछ तो करता रहेगा। अगर हम चिंतन के लिए काम नहीं देंगे तो कुछ ना कुछ दूसरा खुरापात करता रहेगा वो, क्योंकि पहले की यादें तो अंदर ज्ञान बहुत है, कम थोड़ा नहीं ज्ञान, पहले का ज्ञान भी तो बहुत है ना संसार का, फिर संसार के हम आकर्षण खींचते हैं, छूटते थोड़ा नहीं है, इतने जन्म जन्म के विकार अंदर में भरे पड़े हैं। और स्मृति हमको रहती नहीं है कि हम कौन है, तो पुरानी स्मृतियां वो काम करती रहती हैं अपने आप, गहरे तल में चली गई हैं। इसलिए समर्थ स्मृतियों का भंडार हमारे पास होना चाहिए, शक्तिशाली स्मृतियां, ताकि दिल को थोड़ा एक ठेस पहुंचे, धक्का लगे थोड़ा कुछ करना है, क्योंकि साधारण जीवन नहीं है हमारा। तो समर्थ स्मृतियों की लिस्ट बनानी है कि मैं कौन हूं, किसने हमको चुना है, किस लिए इस धरा पर हमको भगवान ने चुना हुआ है, क्या हमारे कर्तव्य है, क्या उन कर्तव्यों के अनुरूप हमारा जीवन चल रहा है, या कहीं किसी दूसरी दिशा में बहते चले जा रहे हैं। तो समर्थ स्मृतियां होनी चाहिए। तो पहली बात थी भगवान की आज्ञाओं का पालन करना है तो हमको खुशी रहेगी। दूसरी है बेफिक्र बादशाह बनना है। खुश कौन रहता है, जिसको कोई चिंता नहीं होती है ना। कहते हैं चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जला देती है। जो चिता शमशान वाली, वो तो मुर्दे को जलाएगी और चिंता जिंदे आदमी को जलाती रहती है। तो बेफिक्र बादशाह बनना है। बेफिक्र था स्मृतियां रखनी है, हमारे साथ है कौन है। भगवान ने हमको तीन तख्त दिए हुए, कौन कौन से, दिल तख्त नशीन और ब्रिप्टी का तख्त और एक स्वराज्य का तख्त हो गया, भविष्य का भी तख्त है, हाँ जी सर्विस का भी तख्त है, जिम्मेवारी का तख्त कहा जा सकता है उसको। तिलक दिया है, कितने सारे तिलक दिए हैं, कौन सा तिलक दिया है, स्मृति का तिलक और विजय का तिलक दिया है। 31 तारीख के मूल्य में था, उसमें विजय की बात थी। बाप दादा तुम बच्चों को विजयी भव के वरदानी देखने चाहते हैं, कितनी बड़ी बात है। हम किसी को कुछ बोले तो उसकी विजय हो जाए, कितनी बाबा की हमारे प्रति अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, कितनी ऊंची आशाएं हैं, तो उन आशाओं के अनुसार हम अपने जीवन को चला रहे हैं, तो हमको स्वयं की जांच करनी है। तो बाबा के दिल तख्त पर कौन बच्चे बैठ सकते हैं, क्योंकि बाबा का दिल तख्त एकदम प्योर तख्त है। तो हम भी कितने प्योर बनते जा रहे दिन प्रतिदिन। बाबा ने कहा ना कर्मेंद्रियां धोखा देती हैं, दिन था ना सबसे खतरनाक कर्मेंद्रियां कौन सी हैं, आंखें। तो इन आंखों को रोज ज्यादा से ज्यादा प्योरिटी इनमें भरनी है। और कैसे भरेंगे, जब भी हम चलते फिरते थोड़ा दो मिनट भी मिलते हैं, भले दो मिनट आंखों को बंद कर लो और महसूस करो कि भगवान मेरी आंखों में समा गया है, और वो पवित्रता के सागर की सारी पवित्रता मुझ आंखों में समाती जा रही है, समाती जा रही है पवित्रता, समाती जा रही है, भरती जा रही है आंखें। ये पवित्र आंखें हैं। ये आंखें संसार के आकर्षणों में आकर्षित हो नहीं सकती, क्योंकि भगवान के आकर्षण में आकर्षित हो चुकी हैं। भगवान इन आंखों में समाया है, इसलिए बाबा कहते तुम बच्चे मेरे नैनों के नूर हो। प्रैक्टिकल में अनुभव करना है कि भगवान हमारे साथ में है, है ना। कल परसों बोली दादी जी का संदेश था ना, तो एक बार अव्यक्त बाप दादा से मिलन मना रहे थे, और बहुत साल पहले की बात है, बोली दादी बीमार थे तो काफ़ी क्रिटिकल उनकी उस समय स्वास्थ्य के प्रति ऐसे था, तो उनको सोच रहे थे ले जाने के लिए अहमदाबाद, लेकिन बोली दादी मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी अहमदाबाद। फिर बाबा ने स्टेज पर बुलाया और बाबा ने ऊपर से लेकर नीचे तक हाथ फेरा और दादी ठीक हो गई। तो महसूस करना, क्योंकि वो सुप्रीम सर्जन है, तो हम उसको क्यों नहीं यूज करते। बीमारियां छोटी मोटी आएंगी, लेकिन वो सहन करने की शक्ति, वो सामना करने की शक्ति, बीमारियों को फेस करने की पावर बाबा हमारे में भरेगा। तो महसूस करना है जैसे अव्यक्त बाप दादा ऊपर से लेके नीचे तक अपने हाथ फेर रहा है ना। कहां भी थोड़ी दर्द हो रही है, सीने में दर्द हो रही है, दो मिनट रख दो हाथ, जैसे भगवान की सारी शक्तियां सीने में समा गई हैं, भगवान की सारी शक्तियां घुटनों में समा गई हैं, है ना, आंखों में समा गई हैं, पूरी बॉडी में समा गई हैं, हर कर्मेंद्र में समा गई हैं। तो ऐसे योग के छोटे छोटे प्रयोग करने हैं, बाबा को यूज करना है। यूज करने का टाइम तो अभी है, स्वर्ग में थोड़ा यूज करेंगे। केवल संगम युग ही भगवान को हम यूज कर सकते हैं। बाबा ने कहा ना, तुम तो मुझे बुलाओ दिल से और मैं तो हाजिर हूं, बंधा हुआ तुम बच्चों की मदद करने के लिए, तुम कितना यूज करते हैं उसको। तो बड़े प्यार से, नए नए तरीके से, रोचक तरीके से भगवान को यूज करना है। वो हमारा अपना है, सुप्रीम सर्जन है। बाबा ने आज बताया ना, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, तुम्हें रूहों को क्या करना है, इंजेक्शन लगाना है। तो पहले तो अपने आप को इंजेक्शन लगाने हैं, महसूस करना है भगवान स्वयं इंजेक्शन लगा रहे हैं हमारा, और सारा ज्ञान अंदर में जा रहा है उसका, सारी शक्तियां उसके अंदर में जा रही हैं, है ना, सारे गुण उसके अंदर में जा रहे हैं, सारे वाइब्रेशन जा रहे हैं, परम धाम के वाइब्रेशन, जैसे बाबा पकड़ के लाया और सारे वाइब्रेशन यहाँ समा दिए, है ना। जैसे शरीर ही वाइब्रेशन का हो गया है, ये शरीर जैसे रहा ही नहीं, वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन है, क्योंकि सारा खेल कहाँ बिगड़ता है, जब हमें शरीर की समृद्धि आती है, बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं। जब हमको सेल्फ कॉन्शियस या सोल कॉन्शियस में हम रहते हैं तो स्थिति शक्तिशाली होती है। जैसे हम देह की स्मृति में आते हैं तो हमारी अवस्था गिर जाती है, तो हम फिर हद के तेरे मेरे में आते हैं, इधर उधर की बातों में चले जाते हैं, प्रपंच में चले जाते हैं, परचिंतन में चले जाते हैं, परमत में चले जाते हैं, और परोपकार का सारा काम छूट जाता है। तो बाबा को यूज करना है, क्योंकि भगवान के सिवा हमको कोई दूसरा सुधारने की ताकत है ही नहीं किसी में भी। भले हम जितनी मर्जी क्लासेस सुनते हैं, लेकिन काम हमको व्यक्तिगत स्तर पर ही करना पड़ेगा, खुद का अंतर पुरुष, एक दूसरे के हमको अनुभव लेने लेने हैं, क्योंकि पता नहीं किसका अनुभव हमारे जीवन को एकदम तुरंत परिवर्तन कर दे। किसी ना किसी के माध्यम से तो बाबा काम अपना करवा ही लेगा, ये नहीं कि हमारे काम कोई काम रुक जाए यज्ञ का, भगवान अपना काम तो अपने यज्ञ का करवा ही लेगा। ये तो हम सबका नसीब है, भाग्य, जो उसने हमें अपने यज्ञ में सहयोगी करने के लिए समझा, योग्य समझा थोड़ा, ये तो हमारा भाग्य बनाने के लिए है। वो तो बाबा कहते ना, मैं चुटकी में सारा संसार परिवर्तन कर सकता हूं, तो हम सबका भाग्य है ना। तो बाबा को हमको यूज करना है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते अनुभव करना है। कल की मूल्य में था, बाप दादा तुम्हारी शत्रशाया है, था ना कल मूल्य में, तो सारा दिन महसूस किया कि सचमुच मैं उसकी शत्रशाया में चल रहा हूं। ऐसा नहीं वो स्मृति रहती मैं धीरे धीरे चलो, या बहुत धीरे धीरे धीरे, ऐसे ही नहीं है। खाली स्मृति में रखना है, भले हम फास्ट चल रहे हैं, भले कर्म कर रहे हैं, किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, तो महसूस था बार बार यूज करना उसको, एक स्मृति दिलानी है, मैं कहाँ हूं, भगवान की छत्रछाया के नीचे हूं, उसकी सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा को पूरी तरह सुरक्षित करके रखी हुई है, मैं आत्मा उसकी छत्रछाया में बिल्कुल सेफ हूं, शक्तियां मिल रही हैं मुझे। क्योंकि अभी जो फ्यूचर में आने वाली समस्या तो हम देख रहे हैं ना, बाबा ने कहा ना आगे इसमें तो ऐसा आएगा खिड़की खोल के भी दे सकेंगे। अबे तो लॉकडाउन खुल गया, बोले खिड़कियां के दरवाजे खोल के आप इधर पहुंच गए, आगे पता नहीं क्या होगा, खिड़कियां खुलेंगी या नहीं खुलेंगी कैसे कैसे परिस्थितियां आएंगी। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक है अभी भी चल रहा है, आगे जाके इलेक्ट्रॉनिक भी ओम शांति हो जाएगा तो क्या होगा फिर। बाबा कहते ये भी तो तुम बच्चों के लिए साइंस अभी काम कर रही है, आगे जा आगे का तो भरोसा नहीं है, तो बाबा को हमको यूज करना है ना। तो कब खुशी मिलेगी? आज्ञाकारी बनेंगे, बेफिक्र बादशाह बनेंगे और बाबा के दिल तख्त पर बैठेंगे, तो प्योर दिल तख्त पर, और हमेशा स्मृतियों का तिलक हमारे मस्तक में चमकता रहे। 31 तारीख की मूल्य में था ना, बाबा बेफिक्र बादशाहों के मस्तक में क्या देख रहे हैं? दिव्य चमक देख रहे हैं। तो महसूस करना है कि मस्तक जो परमात्म शक्तियों की चमक से चमक रहा है, ये हाथ परमात्म शक्तियों से चमक से चमक रहे हैं। हर क्योंकि पहले हमको स्थूल पर काम करना है, हमारी आदत है स्थूल में प्रैक्टिकल दिखाई देना चाहिए, है ना। स्थूल में सूक्ष्म में तो दिखता ही नहीं है कुछ भी, कहाँ आत्मा दिख रही है ये कितनी चमक रही है। लेकिन कम से कम हमारे व्यवहार में तो परिवर्तन हमको खुद को तो रियलाइज होना चाहिए ना, कि दिन प्रतिदिन हमारा परिवर्तन हो रहा है, और वो परिवर्तन होगा तो खुशी रहेगी, अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो खुशी भी गायब हो जाएगी। तो हमको स्थूल पर परिवर्तन करना है, भगवान को हमको स्थूल पर यूज करना पहले, क्योंकि ये देह क्या है? मंदिर है, बाबा ने कहा ना उस दिन, और तुम हीरे की मूर्तियां हो इसके अंदर, तो इस मंदिर को कितना स्वच्छ रखना है, और इसकी सफाई सिवाय भगवान की कौन कर सकता है? कोई मनुष्य की नहीं कर सकता। जन्म जन्म के विकारों की सड़ान से ये तन कितना कुरूप हो गया है, भले बाहर से तुम्हारा दिखता है ऐसे वैसे, लेकिन अंदर कितनी कुरूपता है, हमारे विचारों की कुरूपता है, हमारी दृष्टि वृत्ति कृति कितनी खराब हो चुकी थी, और भगवान ने हमारे ऊपर आकर कितना उपकार किया है, कितना उसका धन्यवाद होना चाहिए, शुक्रिया होना चाहिए, है ना। तो बाबा को हमको यूज करना है, कदम कदम पर उसको यूज करना है। और खुशी कब मिलेगी? जब हम तंदुरुस्त रहेंगे, और तंदुरुस्ती का साधन है ड्रिल करनी, बार बार छोटी छोटी ड्रिल करनी है। एक सेकंड में यहाँ देह में बैठे हुए हैं, फिर अगर बुद्धि ऊपर नहीं जाती तो और अच्छी ड्रिल कर सकते हैं, स्थूल ड्रिल करनी, जैसे यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे बैठे अभी अपने अपने घर को देखो, घर तो सभी ने अपना लौकिक तो देखा हुआ ना, वहां तो बुद्धि भटक नहीं सकती, पर हम जाने तो भटक सकती है, लेकिन वहां तो नहीं भटकेगी ना। तो सोचना है मैं मधुबन के सारे वाइब्रेशन भर के घर में वाइब्रेशन दे रहा हूं या दे रही हूं, घर के कोने कोने में मधुबन के वाइब्रेशन भरते जा रहे हैं, है ना। ये मधुबन में परम धाम के वाइब्रेशन भरे हुए कण कण में, क्योंकि लंबे समय तक भगवान ने यहाँ भगवान की पद्रमणी हुई है, यहाँ लंबे समय तक दादियों ने तपस्या की हुई है, ब्रह्मा बाबा ने मम्मा ने तपस्या की है, तो ये सारे मधुबन के प्योर वाइब्रेशन स्वयं में भर के घर में पहुंचे फरिश्ता बनकर, और सारे घर के कण कण में परमात्म प्यार के, परमात्म शक्तियों के, परमात्म प्योरिटी के, परमात्म गुणों के वाइब्रेशन जैसे घर में भर दिए, वो जहां आटा रखा आटे में भी भर दिए, जो उस आटे को खाएगा वो भी परमात्म प्यार में घायल हो जाएगा। तो स्थूल में काम करना सारा प्रैक्टिकल, क्योंकि वर्तमान संसार में ज्ञान सुनना बाबा कहते हैं ना कम चाहते हैं, क्या चाहते हैं? वो अनुभव करना चाहते हैं वो, और अनुभव तब हुआ जब हमने खुद अनुभव किया होगा। अगर हमने खुद ही केवल इस ज्ञान को शब्दों तक ही सीमित रखा और अनुभव नहीं लाया तो दूसरों का अनुभव कैसे कराएंगे? तो बाबा को हमको स्थूल में यूज करना है, यही केवल अनुभव करने का जीवन, अनुभव करने का युग, अनुभव करने का समय केवल अभी है। इसलिए बाबा ने कहा दो बातों पर ध्यान रखो, 31 तारीख की मूल्य थी, कौन सी दो बातों पर? संकल्प और समय। देखो सारी स्मृति रखी है मूल्य, कितनी खुशी हो रही होगी अंदर तो ऐसे याद रखने का, दो बातों पर। क्यों कहा था, किस लिए समय और संकल्प? क्योंकि एक एक सेकंड का आधार भविष्य 21 जन्मों के साथ में है, तो कितना अटेंशन चाहिए। तो जीवन में अगर खुशी रखनी है तो बाबा की बातों में मन बुद्धि को, इसलिए बाबा ने कहा ना मुरली का मनन चिंतन, कुछ ना कुछ चिंतन चलता रहना चाहिए, कुछ ना कुछ बाबा को हम यूज करते रहे। तो चौथी बात थी ड्रिल करनी है, मन बुद्धि को बार बार ऊपर नीचे परमधाम में गए या शांत अपना सूक्ष्म वतन में गए या बाबा से हैंडशेक किया, वहां जाके महसूस करना जैसे बाबा बैठे हैं और बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बाबा मेरा हाथ छोड़ ही नहीं रहे हैं, महसूस करना है ना। अब यही सभी महसूस करो, आंखें बंद करके पहुंच जाओ सूक्ष्म वतन में, लाइट की बॉडी में, जैसे मैं सूक्ष्म वतन में पहुंच गया हूं और बाप दादा सामने बैठे हैं, बाप दादा मेरे से हैंडशेक कर रहे हैं, जैसे बाबा की प्रकाश में काया है और बाबा की ब्रुकटी में शिव बाबा चमक रहे हैं और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के हाथों से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में मुझ ट्रांसफर कर रहे हैं और सारी परमात्मा शक्तियां मुझ में आती जा रही हैं। मेरे सारा शरीर प्योरिटी से संपन्न होता जा रहा है, संपूर्ण परमात्मा प्योरिटी मुझ में समाती जा रही है, मेरा नया जन्म हो गया है, मैं पावनता से भरपूर आत्मा हूं। बाबा हैंडशेक करके मुझे सारी शक्तियां ट्रांसफर करके संसार को पावन वाइब्रेशन देने के लिए मुझे भर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। अब मैं फरिश्ता सूक्ष्म बतन से इस देह की दुनिया में आकर आसमान में विचरण करते हुए सारे संसार को प्योरिटी के वाइब्रेशन देता जा रहा हूँ, प्रकृति के पांचों तत्वों को प्योरिटी के वाइब्रेशन देता जा रहा हूँ, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश पांचों तत्वों संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त होते जा रहे हैं। मैं परम पवित्र फरिश्ता हूं, स्वयं बाप दादा ने मुझे ये वरदान दिया है, तुम परम पवित्र फरिश्ता हो। अब मैं प्रकाश में काया वाला फरिश्ता अपनी स्थूल देह में प्रवेश कर रहा हूं और ये स्थूल देह भी संपूर्ण पवित्र हो गई है। मेरी आंखें संपूर्ण शुद्ध हो गई हैं, प्योर निर्मल शीतल हो गई हैं, अंग अंग शीतल हो गया है, अंग अंग में पवित्रता समा गई है, मेरा नया जन्म हुआ है। मेरा कार्य केवल संसार को पवित्र वाइब्रेशन देने का ही है, बाकी सब कार्य तो खेल है, साइड सीन है। मेरा मुख्य कार्य संसार को पवित्र बनाने का है, निरंतर पवित्र वाइब्रेशन देने का है। ओम शांति। तो ऐसे महसूस करना है, कमेंट्री खुद की तैयार करनी है, तो स्वयं शक्तिशाली बन जाएंगे। जब योग में बैठते हैं तो जरूरी नहीं है, अगर हमारा मन बुद्धि भटक रहा है तो योग में बैठे अलग से कॉपी पेंसिल लेके वहीं कमेंट्री लिखना शुरू कर दो, भले घर में है कहीं भी है, अगर ट्रैवलिंग करे तो ट्रैवलिंग करते करते भी लिखो, तो पक्का अभ्यास हो जाएगा और वो हमारे संस्कार बन जाएंगे। और उतना समय हमने अपने मन बुद्धि को पूरा बिजी रखा, इन्वॉल्व रखा, तो मन बुद्धि भटकने का चांस ही नहीं हो सकता है। भटकता कब है? जब हम उसको मौका देते हैं, फ्री छोड़ देते हैं। मन बुद्धि तो छोटे बच्चों की तरह है, छोटे बच्चे को कैसे कंट्रोल करना होता है तो माँ बाप को पता होता है ना, तो मन बुद्धि को कंट्रोल करने की भी शक्ति हम सबके पास है। हमको पता है हमारे मन की कौन सी आदत है, कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ भटकता है, कैसे उसको कंट्रोल करना है। तो पुरानी आदतों के वश हो जाते हैं अगर कंट्रोल करना हम थोड़ा सा ढीला छोड़ देते हैं, है ना। सही महसूस करते हैं ना, सारे दिन में अगर थोड़ा भी टाइम मिलता है हम सोचे 5 मिनट योग में बैठे हैं। अगर हमारे संस्कार दूसरे पहले से मजबूत हैं, पुराने संस्कार तो खींच लेते हैं, वो 5 मिनट बैठेंगे तो सही लेकिन बीतेंगे पुराने संस्कारों में, पुरानी बातों का मन बुद्धि में चिंतन चलता रहेगा, तो कितने कड़े संस्कार हैं वो, कितने प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ये तो कदम कदम पर प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा। तो समय बड़ा कीमती चल रहा है, तो हमको कदम कदम पर अटेंशन रखते हुए अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। अभी शक्तिशाली बनाने का समय है, अभी वरदानी समय है, अभी तो बाबा का सहयोग मिल रहा है, बाद में बाबा भी साक्षी हो जाएंगे, ये टीचर भी कुछ नहीं कर पाएगा। जब अगर परीक्षा आ गई तो टीचर क्या करेगा उसमें, वो तो फिर साक्षी होके जैसे बाबा हाथ पीछे करके खड़े ना इधर साक्षी हो गए, तो ऐसे उस समय भी हो जाएगी, फिर क्या कर सकते हैं। तो अभी तो बाबा हमको मदद देने के लिए बंधा हुआ, बार बार बाबा कहते हैं मदद लो मेरी, मदद यूज करो मुझे, चिंता मत करो तो मैं बैठा हूं, लेकिन हम भी बैठ ही जाते हैं, हम थोड़ा कुछ करते हैं फिर। तो हमको कुछ करना है, बाबा को यूज करना है, बड़े प्यार से यूज करना है उसको, और ये आदत लंबे समय की बनाएंगे तो उसका मजा आएगा, महसूसता होगी। और खुशी कैसे रह सकती है? जब हम वायुमंडल को शक्तिशाली बनाएंगे, आसपास की आत्माओं को शक्तिशाली वायुमंडल के सहयोग की आवश्यकता होती है। मधुवन में आते हैं किस लिए आते हैं? क्योंकि यहाँ वाइब्रेशन शक्तिशाली है, वायुमंडल शक्तिशाली है। हम सबका कर्तव्य क्या है? बाबा ने मधुवन वासियों से बात की थी उस दिन संडे 31 जनवरी की मुरली में, कि हम वायुमंडल को शक्तिशाली बनाते, आने वालों की बड़े प्यार से सेवा करते हैं, तो यहाँ जब हम आते हैं तो किस लिए आते हैं? कि योग हमारा सहज लगे, वो वायुमंडल बनाने का हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। कोई भी ऐसे वैसे संकल्प ना चले, चलते भी हैं, ऐसी बात नहीं कि हम जबरदस्ती के अपने उन संकल्पों का दमन कर दें। अच्छे अच्छे संकल्पों का निर्माण करना है, और वो कहाँ से आएंगे? मुरली से आएंगे। बार बार मुरली पढ़ेंगे ना तो अच्छे संकल्पों की टचिंग होगी। अगर हम एक ही बार पढ़ते हैं सुनते हैं ना तो कोई परिवर्तन, कोई संकल्प की टचिंग वचिंग नहीं होती है। तीन चार बार कम से कम मुरली पढ़नी पड़ेगी। दादियां कितने समय तक मुरली पढ़ते थे? इतनी उम्र होने के बाद भी हमने देखा दादियां डायरी लेकर मुरली सुनने आते थे, प्रैक्टिकल में देखा हो। बाबा आते थे तो दादी मुरली लिखती थी, उसमें लिख रहे हैं यीशु दादी, रतमन दादी, सब लिखते हुए देखा हमने। अभी भी ब्रिष्ट भाई बहने जाते हैं, अभी भी भले अव्यक्त वाणी, अव्यक्त की भी अव्यक्त है, लेकिन अभी भी हमने देखा वरिष्ठ भाई अभी भी लिखते हैं मुरली, मधुबन वाले, तो अभी भी कितना पुरुषार्थ करते हैं। तो हमारा जीवन कितना ऊंचा है, कितना श्रेष्ठ है, हीरे तुल्य जीवन है, इसलिए अपने जीवन के महत्व को किसी भी सूरत में कम नहीं आंकना है। अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस बढ़ाने, छोटे छोटे योग के प्रयोग करने हैं, बार बार अपने मन बुद्धि को बिजी रखने का प्लान बनाना है और उसमें डूबे रहना है, तो खुशी रहेगी जीवन में। ब्राह्मण जीवन में खुशी नहीं होगी तो फिर कब आएंगे? अगर कोई हमको कहे कि भगवान मिला हुआ है और हमारा चेहरा ऐसे है तो कैसे कहेंगे? फिर सामने वाले कुछ तो अनुभव हो, कुछ अच्छे बोल निकले, भले हमारा चेहरा गोल मोल नहीं है, उसकी कोई लेने देने नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे मुख से अच्छे बोल निकले, समय पर सहयोग दें, सामने वाले को कुछ परख सकें इसको क्या चीज चाहिए, इसको शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, खुशी चाहिए। बाबा कितना खुशी जैसी खुराक नहीं है ना, और खुशी लिए कौन सा बच्चा मशहूर है इस यज्ञ में? अंगना बच्चा। हाँ बेंगलोर के बाबा अंगना भाई का नाम लेते थे, अभी तो श्री छोड़ दिया हुआ है। तो हमको खुशी के लिए अपने नई आत्मों का निर्माण करना है। और खुशी कैसे रहेगी? और खुशी कैसे रहेगी? शरीर, हाँ, ज्ञान का मनन चिंतन हो, और दूसरा खुशी रहेगी शरीर को तंदुरुस्त रखेंगे। तो तुमको खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, खाना पीना, एक्सरसाइज, प्राणायाम, ये भी बहुत सारी लाजमी है सब चीजें, क्योंकि दिन प्रसिद्ध बीमारियां भी नए नए रूप से आती हैं। ऐसा नहीं कि बीमारियां नहीं आएंगी, बीमारी तो आएंगी आएंगी, खाना पीना भी ऐसा हो चुका है क्या करेंगे, केमिकल वाला सब चीजें यूज हो रही हैं। तो हमको खाने पीने पर भी बहुत सारी परहेज रखने की आवश्यकता है, नियमित व्यायाम एक्सरसाइज होनी चाहिए, थोड़ा खाएं, शरीर हमारा हल्का रहे, बॉडी तंदुरुस्त रहे, तो नहीं तो थोड़ी सी बीमारी होती है कैसे मन खींचता है, लगता ही हो फिर उस समय। तो जितना समय हम ठीक रहते हैं उतना समय अच्छा योग करने के लिए बॉडी का तंदुरुस्त होना बड़ा जरूरी है। तो हम एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, वो भी बड़ा जरूरी है, थोड़ा प्रकृति का आनंद लें जहाँ जितना तक हो सके। और खुश कैसे रहेंगे जीवन में? हाँ, दूसरों के अवगुण नहीं देखने, विशेषताएं देखने, गुण देखने, क्योंकि अवगुणों को देखने की आदत बड़ी पक्की हुई है, लेकिन गुण देखने, गुण तो बहुत सारे हैं। अगर आप सभी को कहा जाए अपने अपने गुण लिखो तो कितने कितने गुण लिखेंगे। और बाबा कहते थे आपस में ऐसे सेमिनार करो, एक दूसरे के गुण लिखो। अब मैं दादियां यहां मिलते थे, दादियां भी कहते थे आपस में एक दूसरे के गुण लिखो, लेकिन होता क्या है, भले दिखाई दे लेकिन वो हमारे अंदर नहीं आए। उनके दूसरों को अवगुण के निकालने के लिए हमारे अंदर की ऐसी मेंटेलिटी हो कि उनके प्रति शुभ भावना, शुभकामना हो, दूसरे के अवगुणों को अपना अवगुण समझना है जी, फैलाना नहीं है उसको, देखेगा तो जरूर वो, लेकिन फैलाना नहीं है, क्योंकि हमारा परिवार है। अगर हम किसी के अवगुणों को फैला रहे हैं, माना भगवान के चयन पर हम आरोप लगा रहे हैं, उंगली खड़ी कर रहे हैं, भगवान का चयन है और उसके मुंह पर आरोप लगा रहे हैं, ये तो है ही ऐसा है, ये तो पता नहीं कैसे इसकी भगवान के यज्ञ में आ गया, भगवान से गलती होगी इसका चयन करने में, तो दोषारोपण हो गया ना भगवान के ऊपर भी, तो कितना बड़ा पाप हो गया हमारे ऊपर। और फिर उड़ेंगे कैसे, पहले बहुत सारा बोझ है और नया बोझ हम अपने सिर पर रख लेते हैं। तो दूसरों के गुणों का चिंतन करना है, दूसरों को गुण देखने, विशेषताएं देखने। बाबा के तुम बच्चे कौन हो? होली हंस। होली हंस का कर्तव्य क्या होता है? मोती चुगता है, और कंकड़ लग कर देता है, तो हम होली हंस हैं, भगवान के चुने हुए होली हंस हैं। तो होली हंस अर्थात पवित्र हैं, शुद्ध हैं, तो दूसरे की विशेषताएं देखनी है। और खुश कैसे रहेंगे, जब भगवान को बाबा को हमेशा अपने साथ रखेंगे। जिसका साथी है भगवान उसको क्या करेगा, आंधी और तूफान कहते हैं ना, डरने की क्या बात है अगर भगवान अपने साथ है। तो निरंतर साथ रखना, उसको यूज करना है। और कैसे यूज करेंगे, एक तो यूज करने का बताते हैं, हैंडशेक करनी है। और यूज कैसे करेंगे, आह्वान करेंगे बार बार। हाँ, बार बार बाबा का आह्वान करना है, महसूस करना कि सचमुच बाबा आ गया और एक लाइट के रूप में मेरे आसपास में सुरक्षा चक्र बन के खड़ा हो गया। मैं पूरा जैसे परमात्म लाइट की सुरक्षा के बीच में सेफ हूं, एकदम शक्तियों से भर रहा हूं, परमात्म प्यार से भर रहा हूं, परमात्म प्योरिटी से भर रहा हूं। महसूस करना है, बार बार आह्वान करना उसका, तो नई आदत का निर्माण हो जाएगा। और ये आदत हमको अदालत में जाने से बचाएगी फिर, नहीं तो बाद में क्या होगा, धर्मराज तो पूरा हिसाब किताब लेगा, उसमें बाबा भी तो साक्षी हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये बार बार हमको अटेंशन नहीं है। तो कितनी बातें सुनी, सबसे पहली बात सुनी, अगर खुशी में रहना तो क्या करना है, आज्ञाओं का पालन करना है। तो लिस्ट बनानी है कि हमको कौन कौन सी आज्ञा मिली है अमृत वेले से रात्रि तक, उन आज्ञाओं का हम कितना पालन करते हैं, कितना छोड़ देते हैं, कहाँ कहाँ छूट रही है, कहाँ उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अमृत वेले जिस तरीके से बाबा कहते हैं शक्तिशाली होना चाहिए, शक्तिशाली क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है उसका, तो चिंतन करना उसका, खुद पर काम करना है। भोजन करते समय कौन सी आज्ञा मिली हुई है, भले बातचीत करते हैं लेकिन अंदर की एक मेंटेलिटी अपनी अलग ही होनी चाहिए, है ना। होता है कई बार ऐसा नहीं, हमारे समझ कई बार सामने वाला बात करना शुरू कर देता है, जबरदस्ती कर देता है, लेकिन अंदर की हमारी मेंटेलिटी होनी चाहिए उस गिट्टी गिट्टी के साथ कि मैं क्या खा रहा हूँ, ये परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद, बाबा का दिया हुआ प्रसाद स्वीकार कर रहा हूँ, और इस प्रसाद से क्या हो रहा है, ये ब्रह्मा भोजन दुख मंजन भोजन है, कर्मेंद्रियों को शुद्ध करने वाला प्रसाद है ये। तो हमारी वृत्ति भोजन के प्रति चेंज होती जानी चाहिए दिन प्रतिदिन, क्योंकि ये तो सारा आंतरिक गुप्त पुरुषार्थ है, बाहर से थोड़ा दिखाई दे रहा है किसी को, क्योंकि दिन प्रतिदिन परिस्थिति तो बढ़ती जा रही है, परिवार बढ़ता जा रहा है, छोटा नहीं होगा। कहां तक हम अपने आप को किनारे रखेंगे किसी के, परिवार के बीच में रहना, संगठन के बीच में रहना है, संगठन में ही हम सबको, बाबा कहते हैं परिवार में पास तो सब में पास, बहादुरी तो वही है जो संगठन में रह के अपने आप को एकदम शक्तिशाली बना ले, किनारे हो के कोई भी शक्तिशाली नहीं बन सकता, परिवार है ही हमको शक्तिशाली बनाने के लिए आया हुआ है ना। तो क्या पहली बात, बाबा की आज्ञाओं का पालन कहां तक करें, दूसरा हम बेफिक्र बादशाह हैं अर्थात अपने बोझ बाबा को दे दिए हैं, हम हल्के हैं तो खुश रह सकते हैं। तीसरी बात, ताज तख्त और तिलक, हम निरंतर जिम्मेवारी का ताज, प्योरिटी का ताज, पवित्रता का ताज पहन के रखते हैं और बाबा के दिल तक तुर बैठे हैं, बाबा की जो स्मृतियों का तिलक है वो हमको हमेशा लगा रहता है अर्थात सुमान में स्थित रहते हैं। चौथी बात, ड्रिल हम कितना करते हैं, देह से न्यारा होने की बार बार ड्रिल करनी है। बाबा हमेशा सर्वशक्तिवान क्यों है, क्योंकि वो हमेशा देह में है ही नहीं है, वो आत्मा जैसे देह से डिटैच होती है तो बहुत शक्तिशाली हो जाती है। जैसे कई बार दूसरी आत्माएं शरीर में प्रवेश करती हैं, कितना तूफान मचाती हैं, देखा होगा किसी ने देखा होगा, क्योंकि वो देह से डिटैच है इसलिए बहुत ताकतवर हो जाती है। तो देह से हमको डिटैच होने की प्रैक्टिस करनी है, बार देह से डिटैच होकर बाबा को टच किया वापस अपनी देह में, फिर निकले टच किया फिर वापस अपनी देह में, बार बार ऐसे छोटे छोटे प्रैक्टिस अभ्यास करनी है तो शक्तिशाली रहेंगे। तो ड्रिल बार बार करनी है। और क्या करना था, हाँ जी, मुरली का मनन चिंतन, मुरली के पॉइंट याद रखने, कुछ लिखना है और समय पर दूसरों को सहयोग देना, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना, सेवा में अपना टाइम पूरा सफल करना, अपना तन मन धन सफल करना, ये सारी चीजें हमारी खुशियों का ट्रिगर है। ब्राह्मण जीवन हमेशा खुशी का लंगर हमेशा चलता रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। लंगर में कोई भी जाते तो भूखा नहीं लौटने देते, विशेषकर सिख संगत में जाते हैं तो हमेशा लंगर लगे रहते हैं वहां। तो हम तो परमात्मा के बच्चे हैं, तो हमेशा खुशी का लंगर हमारा चलता ही रहे, बंद ही ना हो कभी भी। अच्छा, ओम शांति।
विचार प्रेम भावना नेक कामना मन में होता शुद्ध विचार धरती पर वो सुख का सूरज धरती पर वो सुख का सूरज बांटे सब में प्यार पांच तत्व का वो है मालिक जग की जीवन दान है योगी जीवन बड़ा ही प्यारा ये प्रभु का वरदान है योगी जीवन बड़ा ही प्यारा ये प्रभु का वरदान है दिल की दुआएं वो पाए सभी का हर दिल का अरमान है योगी जीवन बड़ा ही प्यारा ये प्रभु का वरदान है योगी जीवन बड़ा ही प्यारा ये प्रभु का वरदान है।